गोपी जन है वाला जन गिरिवर जय गोपी जन वाला भय गिरिवर धोदानंदन जय ब्रज जन रंजन धोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जयायम नतीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय हो जयायम नतीरा बन चारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा
सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदीष्ट डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेम आनंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा हरे कृष्णा। तो आप लोगों को अभी कुछ परिचय मिला कि आज बहुत ही विशेष पवित्र दिन है। बात नहीं आपस में कोई बात नहीं, सबको इशारा करिए चुप रहने का, आपस में कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल शांत रहेंगे। तो आज बहुत ही विशेष पवित्र दिन है, आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, जो हमारे प्रभुपाद जो इस कौन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके गुरु के गुरु के गुरु, प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु, है ना, उनका आज आविर्भाव दिवस है। उनका अर्च विग्रह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आज उनका जो है पूजन हुआ था, पुष्पांजलि हुई थी, भोग अर्पण हुआ था, कीर्तन हुआ था, दोपहर तक हम लोगों ने उपवास किया था। तो बहुत ही पवित्र दिन है ये। ब्रज लीला में मंजरी है, राधा रानी की मंजरी है, कमल मंजरी, ये इस भौतिक संसार के व्यक्ति नहीं है, कृष्ण की, राधा कृष्ण की मंजरी इस भौतिक जगत में अवतीर्ण हुई पुरुष के रूप में। तो इस भौतिक जगत में पुरुष के रूप में अवतीर्ण हुए, लेकिन नित्य लीला में कृष्ण के साथ जो है ये कौन है, मंजरी है, स्त्री के रूप में है ये, है ना। तो ऐसे महान आचार्य का आज आविर्भाव दिवस है, तो हम लोग सुनेंगे उनके विषय में। तो कुछ बातें हमने सुनी थी फरीदाबाद मंदिर में, तो इस पुस्तक से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। गौड़ी वैष्णव चरितामृत नाम की एक पुस्तक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया, इनके बहुत बड़े बड़े योगदान हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने भगवान चैतन्य के जन्म स्थान का पता लगाया, भगवान चैतन्य के जन्म स्थान का पता लगाया, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, 500 वर्ष की अवधि में श्री चैतन्य का मूल जन्म स्थान गंगा नदी के नीचे ढक गया था। गंगा जी ने अपनी धारा इस प्रकार से बदली थी कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान गंगा जी के नीचे चला गया, है ना, लुप्त हो गया, है ना। जब भगवान चैतन्य थे इस पृथ्वी पर 500 साल पहले की बात है, और जब उन्होंने अपनी लीला समाप्त की तो उनके जन्म स्थान सब लोग जानते थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, गंगा जी ने अपनी धारा ऐसी बदली कि वो जन्म स्थान कहाँ चला गया, गंगा जी के अंदर चला गया। उसके बाद फिर गंगा जी ने अपनी धारा फिर से बदल ली, लेकिन अब वो जन्म स्थान का किसी को पता नहीं चल रहा था। तो ये बहुत बड़ी घटना है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने उस जन्म स्थान का पता लगाया, है ना। सन 1888 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीधाम मायापुर में योग पीठ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उद्घाटित किया। एक प्रसिद्ध संत और परमहंस रसिक वैष्णव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ठाकुर भक्ति विनोद की खोज की पुष्टि की। तो बहुत ही अद्भुत घटना, क्योंकि उस समय नवद्वीप में कोई भी दर्शनार्थी जाता था तो लोग अपना फायदा उठाने के लिए अपने अपने स्थान को घोषित करते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है, यहाँ पर पैसे चढ़ाओ। तो लोग जो है अपना व्यापार कर रहे थे, और जो दर्शनार्थी वो भ्रमित थे कि चैतन्य महाप्रभु का असली जन्म स्थान कौन सा है, ये कहते हैं इधर है, ये कहते हैं इधर, ये कहते हैं इधर। तो कई लोग जो है अपने अपने स्थान को चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान घोषित करते हैं, हैं, और उनका इरादा क्या होता है, पैसा इकट्ठा करना, बोलते पैसे चढ़ाओ, है ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने असली जन्म स्थान घोषित किया, तो उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल के जो है अलग अलग समय के नक्शे देखे, और गंगा जी का बहाव का भी उन्होंने अध्ययन किया कि गंगा जी का बहाव पहले कैसा था, बाद फिर कैसा हुआ, फिर कैसे हुआ। तो अंग्रेजों के शासनकाल में जो नवद्वीप का नक्शा है उन्होंने सब अध्ययन किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु की जो प्राचीन काल के लीलाओं के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया, और उससे जो है उन्होंने फिर पता लगाया चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान ये। उस समय ये गोद्रुम द्वीप में एक घर में रहते थे, तो उस घर से इनको उस स्थान से जो है प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रकाश कैसे निकल रहा है। फिर वहाँ जो निवास करने वाले लोग थे तो उनसे भी जब पूछताछ की इस स्थान के विषय में, तो उन लोगों ने बताया कि रात्रि में यहाँ पर कुछ आवाज़ें होती हैं, कीर्तन की आवाज़ होती है और देवताओं के कीर्तन और नृत्य की आवाज़ होती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ है कोई मतलब दिव्य घटनाएं होती हैं इस स्थान में। फिर तीसरी बात ये कि उस स्थान में तुलसी के वृक्ष के अलावा और दूसरे वृक्ष नहीं पैदा होते। वो स्थान मुसलमानों के अधिकार में था, लेकिन मुसलमानों ने भी जो है उस स्थान में कोई निर्माण कार्य नहीं किया था, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर भी तुलसी महारानी का इतना प्रभाव था कि जहाँ तुलसी के वृक्ष हो गए हैं तो मुसलमान भी जो है तुलसी के वृक्ष को ना तो तोड़ेंगे ना उखाड़ेंगे ना कोई निर्माण कार्य करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है मतलब कई ऐसे प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, लेकिन अंत में एक और सबसे ज़्यादा पुष्टिकरण उन्होंने किया, जगन्नाथदास बाबा जी को वहाँ पर लेके आए। जगन्नाथदास बाबा जी की अवस्था उस समय 120 साल की थी, 120 साल की अवस्था में जानते शरीर कैसा हो जाता है, उनका शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे आधा वृत्त हो, अर्धवृत्त होता है ना, जैसे खड़े जमीन में और सिर भी जो है जमीन में लग गया था उनका, आप समझे। जब खड़े होते थे जगन्नाथ दास बाबा जी तो जमीन में खड़े होते थे और सिर भी उनका जमीन में लगता था, ऐसा उनका शरीर हो गया था, है ना। और जगन्नाथ दास बाबा जी को भक्ति विनोद ठाकुर एक टोकरी में लग करके लाए, उनकी आंखें भी, जगन्नाथ दास बाबा जी की आंखें भी 120 साल की उम्र में कि जो आंखों के ऊपर का जो मांस है वो लटक करके आंखों के ऊपर आ गया था पर्दे की तरह, तो आंखें भी नहीं उनकी खुलती थी, ऐसा उनका शरीर हो गया था, ना तो देख सकते थे और ना चल सकते थे। लेकिन उस स्थान में जैसे ही लाए भक्ति विनोद ठाकुर तो उनके कंधे में टोकरी थी और टोकरी के अंदर वो बैठे हुए थे। कैसे बैठे थे, अपने हाथ पैर दोनों ऐसे करके उकड़ू बैठे हुए थे, लेकिन उस एकदम उछले टोकरी से उछल करके नृत्य करने लगे जगन्नाथ दास हरि बोल। और क्या बोले, यही है वो स्थान, यही है वो जो है मतलब, तो सबसे बड़ा पुष्टिकरण हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान यही है। तो इस तरह से इन्होंने 1888 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उद्घाटित किया, और जगन्नाथ दास बाबा जी ने इसका पुष्टिकरण किया। 120 साल की अवस्था में कोई व्यक्ति जो है खड़ा हो जाए, सीधा खड़ा हो जाए और फिर नृत्य करे और उछल उछल के नृत्य करे, आश्चर्य। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान था, किस तरह से पुष्ट हुआ। इस अति मंगलमय घटना ने गौड़ मंडल से लेकर ब्रज भूमि तक के समस्त गौड़ी वैष्णवों को आनंद विभोर कर दिया। तो इस हमारे चैतन्य संप्रदाय के जो भक्त थे, तो वृंदावन भी बहुत से भक्त थे और जगन्नाथपुरी में भी बहुत से भक्त थे और नवद्वीप में भी बहुत से भक्त थे, तो इस सब भक्तों को जो है ये समाचार जब मिला कि चैतन्य महाप्रभु का असली जन्म स्थान खोजा गया है, तो आनंद की लहर दौड़ी, सब भक्तों को आनंद की लहर दौड़ी, है ना। तो आप लोग जानते हैं ये हरे कृष्ण आंदोलन ये चैतन्य महाप्रभु का ही जो है चलाया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ही इस आंदोलन के पिता हैं, उनका ही जन्म स्थान। जिसने खोजा हो तो सोचिए कितना जो है महान व्यक्ति है, कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो वो भक्ति में उठाकर थे जिन्होंने इसको खोजा, और इन्होंने ही योगपीठ में गौरांग महाप्रभु और श्रीमती विष्णुप्रिया की पूजा स्थापित की, अर्चा विग्रह भी बनवाए। चैतन्य महाप्रभु अर्चा विग्रह और उनकी जो प्रिया विष्णुप्रिया देवी, तो उनके भी अर्चा विग्रह की स्थापना की और पूजा स्थापित की। फिर इन्होंने 1896 ईस्वी में एक बहुत बड़ा कार्य किया भक्तिनाथ ठाकुर ने। देखो 1888 में बहुत बड़ा कार्य हुआ, क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान खोजा और वहाँ योगपीठ बना करके और चैतन्य और विष्णुप्रिया के अर्चा विग्रहों की स्थापना की। अब 1896 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, इन्होंने उस सन में विश्व भर के विश्वविद्यालयों में जो लाइब्रेरी होती है उसमें श्री गौरांग लीला स्मरण भेजा, अंग्रेजी में 47 पृष्ठ की एक पुस्तिका थी जिसमें अंग्रेजी में इन्होंने जो है गौरांग महाप्रभु के विषय में उनका जीवन चरित्र और उनकी जो उपदेश वो लिख करके अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी लाइब्रेरी में भेजा 1896 में। सोचिए उस समय अंग्रेजों का शासन था और किसी भारतीय के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी ये कार्य करने की। अंग्रेजों के शासन में किस भारतीय के अंदर हिम्मत होगी, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का प्रभाव था, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कोई भारतीय सोच नहीं सकता। सोचिए ये तो रहते थे उधर नवद्वीप में रहते थे, लेकिन उस किताब को एक दो छपाई कराई। उस समय जो है किताबों की धार्मिक पुस्तकों की छपाई नहीं होती थी, धार्मिक पुस्तक केवल हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी जाएंगी तो कितना परिश्रम होगा आप सोचिए। मान ली ये किताब है, अगर हाथ से कोई लिखे तो कितने दिन लगेंगे और कितना जो है बड़ा आकार होगा किताब का, और फिर एक ही प्रति लिखी जाएंगी। और समय जब छपाई हुई थी तो माया के प्रचार में ही वो सब किताबें छपती थी, कृष्ण के संदेश का प्रचार थोड़ी होता था उन किताबों के द्वारा। लेकिन इन्होंने सबसे पहले किताब छापी चैतन्य महाप्रभु के संदेश की, और वो पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में भेजा। लाइब्रेरी में अगर कोई किताब डाली जाए रखी जाए तो आप जानते कितने लोग पढ़ेंगे, बहुत लोग पढ़ेंगे, है ना। लाइब्रेरी में कोई किताब रखी है तो कितने सालों तक उसको जो है कोई ना कोई पढ़ता रहेगा, है ना। किसी के घर में आप किताब दे देते हैं तो वो पढ़े या कि ना पढ़े वो घर में पड़ी रहेगी, लेकिन लाइब्रेरी में अगर आपने दे दी किताब तो लाइब्रेरी में अगर पढ़ी है तो कितने लोग देखेंगे उधर, और कोई भी छुएगा उस किताब को, कोई खोलेगा, कोई देखेगा, कोई एक पेज पढ़ेगा, कोई दो पेज पढ़ेगा, तो इस तरह से पढ़ते रहेंगे। लाइब्रेरी में किताब देना कितना बड़ा कार्य है। तो पूरे विश्व भर में जितने विश्वविद्यालय थे सभी में लाइब्रेरी में जो है किताब भिजवाई, एक भारतीय व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, भगवान के भेजे हुए हैं, तभी तो ऐसा कार्य किया, नहीं तो कौन कर सकता ऐसा कार्य, कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। ये गीता प्रेस गोरखपुर तो बहुत बाद में स्थापित हुआ था, धार्मिक पुस्तकें कोई छापता ही नहीं था, कोई नहीं छापता था, इन्होंने जो है ये कार्य किया। चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ये अंग्रेजी में नाम दिया था उस किताब का। तो ये बहुत बड़ा जो है कार्य है और इनको इस कार्य में सफलता मिली। भक्तिवरण ठाकुर ने तीन भविष्यवाणियाँ की थी। पहली भविष्यवाणी क्या थी कि शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा और तथा वो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। भक्तिवरण ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि शीघ्र ही एक ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा जो चैतन्य महाप्रभु संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। तो आप लोग जानते कौन है? प्रभुपाद जी। हरि बोल, हरि बोल। उस समय कोई भी नहीं सोच सकता था कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश भारत से बाहर कहीं जाएगा, लेकिन इनके पास वो दृष्टि थी कि देख सकते थे कि प्रकट होगा। और एक बात और भी विशेष है कि 1896 में जब इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में किताब छपवाई और पूरे विश्व भर के विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में भेजी थी, उसी सन प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1896 में। उसी हरिओम। तो पहली भविष्यवाणी ये थी कि शीघ्र ही एक व्यक्ति ऐसा प्रकट होगा जो कि विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करेगा विश्व भर में भ्रमण करते हुए। तो प्रभुपाद ने विश्व भर में भ्रमण किया। उनके जीवन के जो अंतिम 12 साल थे उसमें प्रभुपाद ने 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा की प्रभुपाद ने, है ना। अच्छा, दूसरी भविष्यवाणी, इन्होंने दूसरी भविष्यवाणी क्या की थी कि शीघ्र ही हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और रूस के लोग करताल मृदंग लेकर अपने अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। हरि बोल। तो ये कार्य भी प्रभुपाद ने ही किया। विश्व भर में प्रभुपाद ने ये कीर्तन की धूम मचा दी। मृदंग शब्द करताल नाद श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सवम यहा स्थापयत वर्ष सहस्र वृंदम नमामि तम श्री प्रभुपाद देवम। मृदंग शब्द करताल नाद, मृदंग के शब्दों के साथ और करताल के नाद के साथ श्री कृष्ण के संकीर्तन उत्सव की जिन्होंने स्थापित कर दिया है हजारों वर्ष के लिए, ऐसे प्रभुपाद को नमस्कार है। तो अलग अलग देशों में प्रभुपाद ने जो है लोगों को भक्त बनाया। उनके जो है मुंडित सिर और तिलक और कंठी माला और शिखा धारण किए, गेरु अवस्थ धारण किए और सड़कों में जो है मृदंग करताल के साथ कीर्तन कर रहे हैं। तो इनकी भविष्यवाणी भक्ति विनोद ठाकुर की ही थी। तो ये दूसरी भविष्यवाणी थी। तीसरी भविष्यवाणी क्या थी? तीसरी भविष्यवाणी थी वो दिन कब आएगा जब गोरे विदेशी श्री मायापुर धाम आकर बंगाली वैष्णवों के साथ गान करेंगे, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। ये जो कीर्तन है, तीसरी भविष्यवाणी क्या थी कि विदेशी गोरे भक्त, विदेशों से गोरे गोरे भक्त पूरी दुनिया भर से आएंगे। कहाँ पर आएंगे? मायापुर में आएंगे और बंगाली वैष्णवों के साथ मिलकर के जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि इसका कीर्तन करेंगे। तो यही भविष्यवाणी प्रभुपाद ने ही सत्य की और प्रभुपाद ही लेकर के आए थे उन विदेशी भक्तों को। तो श्रील प्रभुपाद खुद भी कहा करते थे इस बात को कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस सन में उनका जन्म हुआ था 1896 में, उसी वर्ष भक्तिवरण ठाकुर ने अपना ग्रंथ विदेशों में भेजा था। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ये सफलता जो प्रभुपाद को मिली है वो कैसे मिली है? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से और भक्तिवरण ठाकुर की भी उसमें तीव्र इच्छा थी और उनके जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी भी कृपा, उन्होंने आदेश दिया प्रभुपाद को, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है जो भी सफलता प्राप्त की उसका श्रेय भक्ति विनोद ठाकुर को दिया, चैतन्य महाप्रभु को दिया, अपने गुरु को दिया। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि शुद्ध रूप में कृष्ण भावनामृत के मूल स्रोत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ही है। प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर को इतना महत्व दिया है? क्योंकि उन्होंने ही ये सब पहले से सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार पूरे विश्व में होना चाहिए। और जब कोई शुद्ध भक्त ऐसी इच्छा करता है तो फिर भगवान बन जाते हैं उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो भारत से बाहर सोचा भी नहीं था प्रचार करने के लिए, लेकिन जब उनका एक सेवक इच्छा करता है कि पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार हो, संदेश का प्रचार हो, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने यह भी पूरी की, इच्छा पूरी की। सन 1986 में भक्तिनाथ ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी के ठीक 100 वर्ष पश्चात अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस और 50 अन्य देशों से 3000 गोरे भक्त श्रीधाम मायापुर में इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर में एकत्रित हुए। उन्होंने 1000 बंगाली वैष्णवों के संग जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि इसका कीर्तन किया। कितने भक्त आए? 3000। सोचिए, पूरे विश्व से गोरे भक्त 3000 हैं, जिनकी शिखा धारण किए और मुंडित सिर हैं और तिलक लगाए हुए हैं और जो है कंठी माला धारण किए और गेरुआ कपड़े या सफ़ेद कपड़े पहने, धोती कुर्ता में। 3000 पूरी दुनिया से भक्त आए और 1000 बंगाली वैष्णवों के साथ मिल करके ये 4000 भक्त हो गए कुल मिलाकर। और फिर खूब तुमुल कीर्तन किया चैतन्य महाप्रभु के, है ना। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने जो कहा भगवान ने उसको सत्य किया। भगवान अपने भक्त के वचन को जो है सत्य करते हैं। अपने भक्त के वचन को भगवान कभी झूठा नहीं करते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने चूंकि ये भविष्यवाणी की थी तो सत्य हुई। आपको पता है कितने लोगों ने कैसी कैसी भविष्यवाणी की थी और सब झूठी निकली, है ना। कितने लोग हैं क्या क्या भविष्यवाणी करते रहते हैं। कोई किसी ने भविष्यवाणी की थी 1980 में ही तीसरा विश्व युद्ध होगा और विश्व की 3/4 जनसंख्या मर जाएगी, 1/4 जनसंख्या रहेगी। तो हम पढ़ते रहते थे तो 1980 कब का निकल गया, तीसरा विश्व युद्ध, न तो तीसरा विश्व युद्ध हुआ ना विश्व की 3/4 जनसंख्या मारी गई, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करते रहते लोग भविष्यवाणी। कोई भविष्यवाणी करता है, किसी ने की भविष्यवाणी कि 1985 में प्रलय हो जाएगा, सब लोग मारे जाएंगे। किसी ने भविष्यवाणी की 1990 में होगा, फिर किसी ने भविष्यवाणी की 1995 में होगा, किसी ने भविष्य, ऐसे लोग करते रहते हैं भविष्यवाणी, लेकिन कुछ भी सच्ची नहीं होती हैं भविष्यवाणियाँ। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर की तीनों भविष्यवाणियाँ सच्ची हुई। क्योंकि अब या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान ने ही उनको जो है वो दृष्टि दी कि वो देख सके कि ऐसा होना है, भगवान ने ऐसा निश्चित कर दिया है तो उनको पता चला। या ऐसा भी कह सकते हैं कि भविष्यवाणी उन्होंने अगर अपनी इच्छा से मतलब अगर कह दिया तो भगवान फिर उसको पूरा करने के लिए बंधे हैं। तो दोनों तरह से कहा जा सकता है कि इन्होंने कुछ भी अगर बोल दिया तो अब भगवान जो है उसको अन्यथा नहीं कर सकते, भगवान को सत्य करना पड़ेगा क्योंकि उनका शुद्ध भक्त बोलता है। और ऐसे भी बोला जा सकता है कि भगवान चूंकि करना चाहते हैं तो उनके शुद्ध भक्त को ये पता चल गया और उसने भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा होना है, क्योंकि भगवान ने पहले से निश्चय कर दिया था। 1914 में गदाधर पंडित की तिरुभाव तिथि पर ठाकुर भक्ति विनोद नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो 1914 में इनका जो है तिरुभाव हुआ, इनका आविर्भाव हुआ था 1838 में। 1838 में इनका आविर्भाव हुआ था और 1914 में इनका तिरुभाव हुआ। तो कितने साल की उम्र है इनकी? 1838 है ना, तो 62 साल तो हो गए, 62 और 14 76 वर्ष की इनकी आयु थी। तो 1914 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और राधा माधव की नित्य लीला में ये प्रविष्ट हुए और गोधूलन द्वीप में इनकी आराध्य अर्चा विग्रह श्री श्री गौर गदाधर दर्शनार्थियों को आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा में रहते हैं। गौर गदाधर इनके अर्चा विग्रह हैं। गौर तो चैतन्य महाप्रभु हैं, यानी स्वयं कृष्ण हैं, और गदाधर पंडित वो जो है चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, लेकिन ब्रज लीला में राधा रानी के अवतार है। राधा रानी ने भी पुरुष रूप में जन्म लिया चैतन्य लीला में। तो गदाधर पंडित राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में जन्म लिया। तो इनका जो घर था गोधूलन द्वीप में स्वानंद सुखद कुंज में, तो उसमें गौर गदाधर के अर्चा वगैरह अभी भी हैं ना। राधा माधव की नित्य लीला में भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा करती हैं। तो इस तरह से इनके विषय में हमने कुछ बातें पढ़ के सुनाई। अब एक दूसरी पुस्तक भी है, उसमें भी इनके विषय में काफ़ी बातें लिखी हुई हैं। इतना समय नहीं है सब कुछ बताने का, जितना समय है जितना बता सकते हैं सीमित समय में उतना हम सुनेंगे। इनका पूरा नाम है श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। तो इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1838 में नदिया जिले के एक समृद्ध परिवार में हुआ। इनका जो है बचपन का नाम था केदारनाथ दत्त इनका नाम था। पढ़ाई के बाद ये जो है प्रशासनिक सेवा में लग गए। मतलब अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों का शासन था, तो भारतीय जो विद्यार्थी होते थे जो बहुत तेज दिमाग के होते थे, तो अंग्रेजी सरकार जो है उनको प्रशासन के कार्य में नियुक्त करती थी। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर बहुत तेज दिमाग के थे, तो अंग्रेजी सरकार ने इनको जो है प्रशासन का बहुत ऊंचा पद दिया। वो कौन सा पद था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश। उस समय भारतीय किसी भारतीय को इससे ऊंचा पद नहीं मिलता था अंग्रेजी शासन में है? तो इनको जो है वो पद मिला था। बंगाल के एक शहर में इन्होंने श्रीमद् भागवत पर ऐसा प्रवचन दिया जैसे हजारों लोगों ने सराहना की। श्रीमद् भागवत पर आजकल जो प्रवचन होते हैं वो कैसे होते हैं? श्रीमद् भागवत की कथा तो सुनाते नहीं हैं, बल्कि अपनी अपनी कथाएं सुनाते रहते हैं, नमक मिर्च मिला करके इधर उधर की कथाएं सुनाते रहते हैं और जो पब्लिक होती है उसे कुछ पता नहीं कि ये कहाँ से सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत। पब्लिक सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथाएं सुना रहे हैं, जबकि वो जो है अपनी अपनी बातें सुनाते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कुछ नहीं लिखा है अब वो अपनी तरफ से जोड़ते जाते हैं सुनाते हैं। तो आजकल भागवत सप्ताह ऐसे होते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने जब श्रीमद् भागवत पर प्रवचन दिया था हजारों लोगों ने सराहना की। एक शहर चंपारण नाम का शहर था, वहाँ पर बट वृक्ष के नीचे एक प्रेत रहता था। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का पाठ करवाया और उस प्रेत को मुक्त कर दिया।
हरिबो।
उस बट वृक्ष में एक प्रेत रहता था, तो लोग जो है उस वृक्ष की भी पूजा करते थे। लेकिन उन्होंने उस वृक्ष के नीचे भागवत का पाठ करवाया और उस प्रेत की मुक्ति करा दी। इसके बाद ये जगन्नाथपुरी में आए। जगन्नाथपुरी में सरकार ने इनको जगन्नाथ मंदिर का भार सौंपा, अधिकार सौंपा। तो उस समय अनेक अनियमितताएं हो रही थी। जगन्नाथ मंदिर में जो है जगन्नाथ जी की सेवा में अनेक प्रकार की कमियां हो रही थी। तो अंग्रेज जी सरकार ने इनको जो है अधिकार दिया कि इस मंदिर में जो भी पूजा हो रही है उसमें सुधार कीजिए। तो इन्होंने जो है वहाँ के पुजारियों के ऊपर कई प्रकार के ऐसे सुधार किए जिससे कि भगवान जगन्नाथ जी की सेवा और पूजा सही प्रकार से होने लगी। पहले तो मंदिरों में घड़ी नहीं रखी जाती थी, बिना घड़ी के जो भी पूजा होती थी या मंदिर में दर्शन होता था उसमें घड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन भक्तिवीर ठाकुर के समय में घड़ी बन चुकी थी, घड़ी बन चुकी थी। तो अगर घड़ी बन चुकी है तो मंदिर में घड़ी के अनुसार जो पूजा पाठ है वो क्यों ना किया जाए। जब लोग जो है घड़ी का प्रयोग कर रहे हैं अपने व्यवहार व्यवहारिक जीवन में घड़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो भगवान की पूजा में मंदिर की पूजा में भी घड़ी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाए। तुरंत जगन्नाथ जी के मंदिर में घड़ी के अनुसार ठीक समय पर ये पूजा कितने समय होना चाहिए, ये भोग इस समय होना चाहिए, उन्होंने ऐसे नियम लागू करा दिए जगन्नाथ मंदिर में। भगवान को भोग समय के अनुसार लगने लगा। अब घड़ी अगर ना हो तो भोग लगाएं तो कुछ अंदाजा थोड़ी होता है घड़ी के बिना, है ना। तो दोपहर में कब भोग लगेगा, कब भोग नहीं लगेगा, कब मंदिर बंद होगा, कब मंदिर खुलेगा, कुछ कुछ अंदाजा नहीं लगता था, है ना। उस समय तंत्र में एक निपुण विशकसेन नामक एक ठग था जिसने अपने को महाविष्णु का अवतार घोषित कर रखा था। भक्तों ठाकुर ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसकी शैतानी शक्तियों पर नियंत्रण करके उसे हथकड़ियां पहनाई और इस प्रकार उन्होंने अनेक स्वयं घोषित भगवानों को सजा दिलवाई। तो किसी व्यक्ति के पास अगर कुछ भी शक्तियां आ जाती हैं तो जनता को जो है वो प्रभावित करता है ये कह करके कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। तो भिषक्सेन नाम का भी एक ऐसा तांत्रिक था जिसके पास कुछ शक्तियाँ थी तो उसने घोषित कर दिया था कि मैं भगवान हूँ। तो अंग्रेजी सरकार के समय में उसने बहुत लोगों को आतंकित कर रखा था भिषक्सेन, और वो दूसरे की जवान जो लड़कियां होती थीं उनके साथ रास लीला करता था, अपने को भगवान कहता था और लड़कियों के साथ रास लीला करता था। तो बहुत से जो सज्जन लोग थे तो वे लोग बड़े परेशान हुए इस व्यक्ति के कारण, और अंग्रेजी सरकार में जो है उन्होंने शिकायत की। तो सरकार की ओर से इनको अधिकार दिया गया कि आप इसका जो अत्याचार है इसको रोकिए। तो पब्लिक जो है उस तांत्रिक से बात करने में भी डरती थी कि कोई कुछ भी उल्टा उसको बोल देगा तो वो उसको ऊपर भी अपनी शक्ति से उसको अनिष्ट कर दे। लेकिन भक्तिवर ठाकुर को कोई डर नहीं था क्योंकि कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनको कुछ भी डर नहीं था। वो पुलिस को लेकर के पहुंचे तो जहां पर वो रहता था वहां पर भक्तिवर ठाकुर पहुंचे तो वो तांत्रिक था तो वो जान गया कि कौन है। तो बोला कि मैं जानता हूं आप केदारनाथ दत्त हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप मेरे आदेश के अनुसार काम करते रहिए तो मैं आपको भारतवर्ष का राजा बना दूंगा। तो भक्तिवर ठाकुर बोले क्या अगर आप भगवान हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जगन्नाथपुरी में जाइए। तो उसने कहा कि जगन्नाथपुरी में तो जो भगवान है वो तो लकड़ी के भगवान है, मैं वहां जाके क्या करूंगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसका जो है बहुत अपराध माना, क्योंकि ये बताया गया शास्त्रों में कि भगवान के अक्षर विग्रह को जो लकड़ी या पत्थर मानता है तो वो पहले से ही नरक जाना निश्चित है उसका। भगवान के जो अक्षर विग्रह हैं लकड़ी या पत्थर के बने हैं, लेकिन लकड़ी पत्थर नहीं है, भगवान है। और जो व्यक्ति लकड़ी पत्थर मानता है वो पहले से ही नरक में जाना निश्चित है उसका। तो उस भिषक सिंह ने जब जगन्नाथ जी को कहा, जगन्नाथ जी तो लकड़ी हैं, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने इसका बड़ा अपराध माना। उन्होंने कहा इसको बंदी बनाओ, अभी बनाओ बंदी। इसके पास कई शक्तियां हैं, तांत्रिक है, लेकिन भगवान के सब विग्रह को लकड़ी पत्थर बोलता है, सब बेकार, इसका सब ज्ञान बेकार है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको तुरंत बंदी बनवा लिया, जेल में बंद कर दिया। लेकिन उसके पास शक्तियां थी, तो भक्तिविनोद ठाकुर उसने बीमार कर दिया, उनके सब घर वालों को बीमार कर दिया, उनकी पत्नी उनके बच्चे सब बीमार हो गए। उसका काला जादू था तो बड़ा भयानक बुखार पैदा कर दिया। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर के आदेश से किसी व्यक्ति ने उसके सिर के बाल जब काट दिए तो उसकी सब शक्तियां बेकार हो गई, और जेल के अंदर ही उसने फिर कहीं से जहर की पुड़िया मंगवाई और खा करके आत्महत्या कर ली। वही भगवान। उस समय पब्लिक तो जो है मतलब भक्तिविनोद ठाकुर का विरोध कर रही थी कि आपने जो है भगवान को जेल के अंदर बंद कर दिया है, अब तो आप बहुत मुश्किल होगा आपका जीना। लेकिन उस तांत्रिक के जैसे ही बाल काटे और सिर के सब बाल कट गए तो उसकी शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि इनकी शक्तियां जो है उनके बालों में होती हैं। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत से तांत्रिकों को जो है सुधारा, दमन किया, जो अपने को भगवान कहते थे ना। हरि बोल। जगन्नाथपुरी में अपने निवास के दौरान उन्होंने वेदांत सूत्रों पर लेख लिखे, कल्याण कल्पतरु नामक दिव्य ग्रंथ लिखा। 1870 में इन्होंने पुरी छोड़ दी और 1881 में सज्जन तोषणी नामक सुविख्यात आध्यात्मिक पत्रिका प्रारंभ की। सज्जन तोषणी नाम से एक पत्रिका प्रारंभ की, पत्रिका मासिक पत्रिका, हर महीना छपेगी। जैसे अभी भगवत दर्शन नाम की पत्रिका है, हर महीना छपती है, मासिक पत्रिका है, ऐसे सज्जन तोषणी नाम की मासिक पत्रिका इन्होंने छापना शुरू किया। इन्होंने श्री कृष्ण संहिता नामक ग्रंथ द्वारा कृष्ण के आध्यात्मिक अस्तित्व का प्रकाश किया। एक पुस्तक लिखी श्री कृष्ण संहिता, है ना, जिसमें जर्मनी के विद्वानों ने भी इसकी प्रशंसा की, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण को वैदिक प्रमाणों के आधार पर परब्रह्म घोषित किया था। जर्मन के विद्वानों ने भी प्रशंसा की इस पुस्तक की, क्यों, क्योंकि कृष्ण भगवान है, उन्होंने जो है बहुत से वैदिक प्रमाण दिए कि कृष्ण भगवान है, हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। नड़ैल ग्राम में रहने के बाद ये वृंदावन आए, यहाँ इन्होंने कंजर नामक डाकुओं को सरकार की मदद से कई महीनों के संघर्ष के बाद वहाँ से सदा के लिए भगा दिए। वृंदावन में जब भक्तिविनोद ठाकुर आए तो उस समय वृंदावन में बहुत से डाकू थे जो कि यात्रियों को लूटते थे। भक्तिविनोद ठाकुर जब वृंदावन आए तो वृंदावन आए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन जब इनको पता चला कि यहाँ वृंदावन में बहुत से कंजड़ नाम के डाकू हैं, कंजड़ नाम के डाकू हैं जो कि यात्रियों का धन लूटते हैं, तो उन्होंने जो है पुलिस की सहायता से हमेशा के लिए उनको भगाया वहां से। वृंदावन में कोई व्यक्ति आए और ये डाकू लोग उसको लूटे हैं, है ना, उन्होंने तुरंत कार्यवाही की। ये कार्य जो है, सोचिए कितना बड़ा कार्य है। इन डाकुओं के कारण कोई वृंदावन में नहीं आ सकता। तो इन डाकुओं को ही हमेशा के लिए भगाया इन्होंने। इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर बड़ी सभाओं में भगवान नाम संकीर्तन के समस्त सिद्धांतों को समझाते हुए विस्तृत रूप से प्रचार करने लगे। 12 साथ में रहते हुए भक्ति विनोद ठाकुर बंकिम चंद्र से मिले। बंकिम चंद्र एक बहुत बड़े लेखक हैं बंगाली में। उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो उस समय जो है इनके पास आए बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र ने कृष्ण पर एक पुस्तक लिखी थी और श्रील भक्ति विनोद को कृष्ण के विषय में प्रामाणिक सूत्र जानकर उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को उसे जांचने के हेतु एक प्रतिलिपि दी। क्या समझे, बंकिम चंद्र ने एक कृष्ण के बारे में पुस्तक लिखी थी, लेकिन उनको तो कृष्ण के तत्व का कुछ पता नहीं है। वे तो उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति हैं और उपन्यास जो लिखता है उसको बहुत कल्पनाएं करनी पड़ती हैं, कल्पना के आधार पर ही कहानियां बनानी पड़ती हैं। तो इसी प्रकार से कल्पना के आधार पर ही बहुत सी कृष्ण के बारे में उन्होंने कहानियां लिख दी थी। जब इनके पास आए बंकिम चंद्र तो इन्होंने 4 दिन तक उनके साथ में चर्चा करके पूरी पुस्तक का संशोधन कराया, पूरी पुस्तक का संशोधन कराया कि कृष्ण के विषय में आपने यहाँ जो सूचना दी है ये सही नहीं है, इसको सुधारो। इस तरह से बारह सात में अंतिम वर्ष के दौरान उच्च न्यायालय के एक नामी वकील के निवेदन पर इन्होंने गीता पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के फारसी के साथ अपने अनुवाद सहित भगवद गीता का प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित कराया। तो यहाँ पर बताया गया है कि उच्च न्यायालय का एक बहुत प्रसिद्ध वकील था जिसने इनसे प्रार्थना की, भक्ति ठाकुर से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की कि गीता पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भाष्य के साथ आप भी अपने शब्द दीजिए गीता के हर श्लोक पर। तो उनकी प्रार्थना से इन्होंने उसको भी स्वीकार किया। तो इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भाष्य के साथ अपने अनुवाद सहित भगवद गीता का प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित कराया, प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित कराया है ना। अगर किताब जो है छपाई हो तो आप जानते हैं कि कितना लाभ होगा, एक साथ कितनी किताबें छप जाएंगी और उनका जो है व्यापक मात्रा में वितरण होगा, कितना लाभ होगा। उन्हें तो ऐसे कोई व्यक्ति अपने हाथ से किताब लिखे तो एक किताब लिखने में उसको कई साल लग जाएंगे, और फिर एक किताब लिखी है तो वो किसी को दे भी नहीं सकता। तो शीघ्र ही सभी प्रतियां बिक गईं। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य शिक्षामृत नामक एक अपूर्व ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने विभिन्न पाश्चात्य दार्शनिकों को क्रमशः परास्त करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को परम सत्य के रूप में स्थापित किया। 1885 में इन्होंने शुद्ध हरि भक्ति के प्रचार के लिए श्री विश्व वैष्णव राजसभा नामक संस्था प्रारंभ की। कलकत्ता के कई नागरिक इस संस्था से जुड़े गए। भगवान श्री चैतन्य की भूमि के दर्शनों को ये इतने व्यग्र थे कि उन्होंने कई बार किसी निकटवर्ती शहर में अपने स्थानांतरण की दरख्वास्त दी। भक्तों ठाकुर की बहुत इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु के भूमि का ये दर्शन करें, लेकिन स्थानांतरण की दरख्वास्त दी कि हमारा जो है ट्रांसफर कराओ, कहाँ पर, किसी भी स्थान में करा दो जो नवदीप के पास हो। तो इन्होंने इस्तीफा दिया। जब सरकार ने इनको ट्रांसफर नहीं किया तो इन्होंने सरकार से क्या मांगा, इस्तीफा मांगा। तो फिर इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अंग्रेजी सरकार में जो है इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। क्यों? अंग्रेज सरकार में इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ क्यों? क्योंकि इनकी इतनी अच्छी सेवा थी, अंग्रेज सरकार बहुत प्रसन्न थी इनसे। तब इन्हें नवदीप मायापुर से केवल 25 मील दूर कृष्णनगर में स्थानांतरण मिल गया। चलो ठीक है, आप बहुत आग्रह कर रहे हैं तो आप जो है कृष्णनगर में स्थानांतरित आपको किया जाता है, आप वहाँ रहिए, जो कि नवदीप से 25 किलोमीटर की दूरी पर। इन्होंने तत्काल श्री महाप्रभु की लीला स्थलियों के संबंध में पूछताछ की। इन्हें ज्ञात हुआ कि नवदीप शहर तो मात्र 100 वर्ष पहले ही बसा है, इसलिए वे चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक जन्म स्थान को खोजने में तत्पर हो गए। कुछ लोगों ने बताया कि महाप्रभु का जन्म स्थान नवदीप शहर में है, तो किसी अन्य लोगों ने कहा कि महाप्रभु का जन्म स्थान गंगा के पथ में लुप्त हो गया है। इन बातों से वे संतुष्ट न हुए। अनेक कठिनाइयों के बाद इन्हें एक स्थान का पता चला जिसे अनेक आत्मज्ञानी लोग महाप्रभु का जन्म स्थान मानते थे, परंतु वो मुसलमानों के कब्जे में था और स्थानीय पूछताछ तथा प्राचीन मानचित्रों के आधार पर आखिरकार इन्होंने वास्तविक जन्म स्थान खोज ही लिया। इसके बाद इन्होंने नवदीप धाम महात्म नामक एक मूल्यवान ग्रंथ लिखा। आपको समझना चाहिए कि इन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, इन्होंने 100 पुस्तकें लिखी। और लिखी कैसे? ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो 6 घंटा तो इनको ऑफिस में काम करना पड़ता था, तो रात्रि में 8 बजे 8 बजे से 10 बजे तक ये विश्राम करते थे, और उसके बाद 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक क्या करते थे? लिखते थे। सोचिए हरी बो, देखो 6 घंटे तो ऑफिस में काम कर रहे हैं और उसके बाद रात्रि में 10 बजे से 4 बजे तक कितना घंटा हुआ? 6 घंटा लेखन का कार्य करते थे। इस तरह से इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। नवदीप धाम महात्मा नामक एक मूल्यवान ग्रंथ लिखा था। वैष्णव जगत के इतिहास में 1895 सबसे सक्रिय वर्ष था और भक्तिराव ठाकुर उसके प्रमुख संचालक थे। इसी वर्ष इन्होंने महाप्रभु के जन्म स्थान योगपीठ को संवैधानिक रूप से उद्घाटित किया, जिसमें हजारों दर्शनार्थियों ने भाग लिया। ये 1895 की घटना है। चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान को इन्होंने वैधानिक रूप से घोषित किया। इनकी लेखनी कभी नहीं थकी। इन्होंने श्री हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य और श्रीमद् भागवत अर्क मरीचिमाला आदि अनेक ग्रंथ लिखे। ये अपना सरकारी कार्य करने के बाद देर रात में अपना लेखन कार्य प्रारंभ करते और 1-2 बजे तक भजन तथा लेख लिखते रहते। बंगाल के कई जिलों में ये भगवान नाम प्रचार हेतु स्वयं जाते थे। इनकी व्यक्तिगत उपस्थिति लोगों पर चमत्कारी प्रभाव डालती थी। श्री गौतम द्वीप में बने श्री स्वानंद सुखद कुंज नामक इनके निवास स्थान से हरिनाम का प्रचार पूरे जोर शोर से चलता था। इसके बाद 1900 ये घटना किस समय की है? 1896 की घटना है ना। इसके बाद सन 1900 आया, 1900 के बाद 1901 आया, यानी 20वीं शताब्दी शुरू हो गई। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर रहने का निश्चय किया और वहाँ पर एक घर बनाया। 1908 में श्री गौर किशोरदास बाबा जी से बाबा जी दीक्षा ली और पूर्ण विरक्त जीवन बिताने लगे। 1910 में वे भगवान के नित्य लीलाओं पर समाधि में लीन रहने लगे और 1914 में इस संसार से विदा लेकर गोलोक धाम चले गए। हरि बोल। इस तरह से हमने भक्तिराव ठाकुर के बारे में कुछ बातें इस पुस्तक से पढ़कर के सुनाई। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न? हाँ,
ट्रेन, ट्रेन 29.
हाँ, एक बहुत बहुत आश्चर्य की घटना है, ये इसमें नहीं लिखा है लेकिन बहुत आश्चर्य की घटना है कि जब ये जो है, पहले तो अंग्रेजी सरकार से स्थानांतरण मांगते थे कि हमें कोई स्थान ऐसा दे दीजिए, हमारा ट्रांसफर कर दीजिए जो नवद्वीप के पास हो, ताकि मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्थानों का पता लगाऊं। तो अंग्रेजी सरकार ने जब इनको ट्रांसफर नहीं दिया तो इन्होंने फिर इस्तीफा दिया कि हमें अब नौकरी नहीं करना। तो इस्तीफा मंजूर नहीं किया अंग्रेजी सरकार ने, क्यों? क्योंकि इनका कार्य इतना बढ़िया होता था, सरकार ने जो है इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो फिर सरकार ने क्या किया, 25 किलोमीटर दूर कृष्णानगर में इनका जो है स्थानांतरण कर दिया, जहाँ पास पड़ता है नवद्वीप। तो ये जो है पहले से ही, पहले दिन ही जब इनका ट्रांसफर हुआ था कृष्णानगर में, तो ये वहाँ नवद्वीप के लीलाओं, लीला स्थलों का दर्शन करने के लिए गई। और देखिए 25 मील दूरी पर इन्होंने अपना घर बनाया था गोधुन द्वीप में, स्वानंद सुखद कुंज। तो रोज नवद्वीप से कृष्णानगर इनका आना जाना होता था। तो उन दिनों ये सब कोई साधन नहीं थी ना, अपनी कार, अपनी बस, कुछ नहीं था। तो सरकार ने अपनी तरफ से इनके लिए साधन बनाया था। क्या साधन बनाया था कि इनके घर से एक रेलवे लाइन चालू करी, एक व्यक्ति के लिए ट्रेन चालू की और रेलवे लाइन बिछाई एक व्यक्ति के लिए। उस समय कार नहीं थी, कोई कार नहीं थी, अब यह तो बैलगाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो अंग्रेजी सरकार ने इनके लिए एक जो है रेलगाड़ी और रेलवे लाइन बिछाई, कहाँ से कहाँ तक, गोधुन द्वीप इनके घर से प्रारंभ करके कृष्णानगर तक 25 मील रेलगाड़ी जो है इनको ले जाएगी ऑफिस में, और ऑफिस से फिर वापस आएंगे रेलगाड़ी में बैठ करके। एक व्यक्ति के लिए रेलगाड़ी और रेलवे लाइन में बिछाई, क्योंकि अंग्रेजी सरकार में जो है इनका इतना महत्व था कि इनको इस्तीफा नहीं दिया, मतलब इन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन मंजूर नहीं किया कि नहीं नहीं आपकी सेवा जो है, आपकी सेवा की हमको जरूरत है, आप सेवा नहीं छोड़ सकते। सोचिए सरकार एक व्यक्ति के लिए रेलवे लाइन बिछाए और ट्रेन भी जो है चालू करे, केवल एक व्यक्ति के लिए 25 मील घर से ऑफिस, फिर ऑफिस से घर वापस आना। तो ये सब जो है बड़े आश्चर्य की बातें हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जो है भगवान की चूँकि लीला में एक मंजरी है, है ना, इसलिए उनके जितने भी कार्य हुए वो सब सफल होते थे और बड़ा बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होती थी भक्तिविनोद ठाकुर को, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर के विषय में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है भक्तिविनोद ठाकुर ने जब सरकार से प्रार्थना करी कि हमें ट्रांसफर कर दो, हमें ट्रांसफर कर दो, कहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए कहा, प्रार्थना की थी नवद्वीप के किसी पास के स्थान में, तो सरकार ने मंजूर नहीं किया। तो फिर उन्होंने क्या क्या मांगा, रिजन, इस्तीफा, इस्तीफा मांगा। तो सरकार ने इस्तीफा नहीं उनका स्वीकार किया है, तो उनकी मांग स्वीकार करी। तो कहाँ पर इनका ट्रांसफर कर दिया, कृष्णानगर में, जो नवद्वीप से कितना दूर था, 25 मील। 25 मील का मतलब इसमें डेढ़ गुना हो जाएगा ना, 37.5 किलोमीटर समझो, 37-38 किलोमीटर दूर। तो इनके घर से कहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई थी, कृष्णानगर तक एक रेलगाड़ी इनके ही लिए, एक व्यक्ति के लिए रेलगाड़ी, है ना। सरकार के नज़रों में कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वो, है ना। श्री भक्तिविनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौणताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।